समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
गोराई गया आंधिया, नाचे झूमे ये मन मत वारा घोराई गया आंधियारा, गया आंधियारा, गया आंधियारा।
आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और हर सुबह हमारे जीवन में लेकर आती है एक नए उजाले के साथ ही एक नई आशा और उम्मीद की किरण। इसी कामना के साथ कि आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ देता है आपको वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के आज की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दो सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रेनू कटारिया। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और रेनू आपको भी नमस्कार।
नमस्कार एंड हेलो सिद्धार्थ एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। और सिद्धार्थ आपने एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमें सुनवाया है एंड बिकॉज वी आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन एक्शन, जो कि इस गाने से भी हमारे को बहुत कुछ पता चलता है कि एक्शन में ही सब कुछ है। There's a small quote that I would like to say here. Do something today that brings you closer to being the best version of yourself. और इसी के साथ लेट अस ब्रिंग टू आवर डियर लिसनर्स आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, वेयर इन वी विल बी गिविंग यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे दैट इज द 8th ऑफ जुलाई। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज।
जी हाँ, नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्रासिलिया पहुंचे। ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसिरो मोंटेरो फिल्हो ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री रियो डी जेनेरियो में दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्रासिलिया पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत और ब्राजील की मजबूत साझेदारी की नई पहल में प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजधानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पारंपरिक ब्राजीलियाई सांबा रेगे की संगीतमय प्रस्तुति से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वार्ता में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क के मुद्दे भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों देश आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
In the final leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will reach Windhoek in Namibia tomorrow on the invitation of Namibian President Netumbo Nandi-Ndaitwa. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Namibia and the third ever prime ministerial visit from India to Namibia. Our correspondent reports that the visit is aimed at expanding the scope of bilateral relationship and explore new areas of cooperation in various key sectors such as hydrocarbons, rare earth materials and unified payment interoperability, among others. Our correspondent covering the visit has filed this report on India-Namibia relationship.
Both India and Namibia have a shared history of anti-colonial struggle. The first ever diplomatic mission of Namibia, known as SWAPO that time, was set up in Delhi in 1986, even before the independence of Namibia. Today, both the countries share a wide range of areas of cooperation, including trade and investment, mining, diamond processing, energy, healthcare, defense, environment and biodiversity, and capacity building. The trade between the two countries is $600 million, and Indian investments in Namibia are about 800 million. Taking forward the partnership in wildlife conservation, 8 cheetahs were translocated from Namibia to India's Kuno National Park in September 2022. The upcoming visit is also set to explore new areas of cooperation in other sectors. Aparna Khund, Akashwani News, Windhoek.
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं अमृत भारत ट्रेन की। बिहार में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पटना दिल्ली, दरभंगा लखनऊ, मालदा लखनऊ और सहरसा अमृतसर सहित चार नई अमृत भारत ट्रेनों की घोषणा की है। सीमांचल के लिए एक नियमित जोगबनी इरोड ट्रेन की भी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि 1156 करोड़ रुपए की लागत वाली 53 किलोमीटर लंबी भागलपुर जमालपुर तीसी लाइन परियोजना को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।
India is set to expand its offshore energy exploration efforts with plans to develop a robust ecosystem for deep water exploration and production (ENP) technologies. The initiative comes as the country prepares to explore more than 2.5 lakh square kilometers under the 10th round of the Open Acreage Licensing Policy or OALP, making it one of the largest offshore exploration bid rounds globally. The announcement was made by Minister of Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri following his visit to the Northern Lights CO2 terminal in Bergen, Norway. Deep water ENP technologies refer to sophisticated tools, methods and systems used to identify, drill and extract oil and gas from underwater reserves located at depths beyond 500 meters.
और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के लिए आज सुबह 7541 तीर्थयात्रियों का सातवां जत्था जम्मू में भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से रवाना हुआ। 309 वाहनों में सवार होकर ये जत्था आधार शिविर से रवाना हुआ। इनमें से 3321 तीर्थयात्री आज तड़के बालतल आधार शिविर के लिए और 4220 तीर्थयात्री पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए, जहां से श्रद्धालु पवित्र गुफा के लिए अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस बीच यात्रा सुचारू रूप से जारी है। कल 23,857 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए, जिसके साथ पहले 6 दिनों के दौरान दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 93,000 से अधिक हो गई है और आज ये आंकड़ा 1,00,000 को पार करने वाला है।
And moving on to some international news, Siddharth, U.S. President Donald Trump has announced to impose a 25% tariff on goods imported from Japan and South Korea starting August 1. The latest tariff announcement comes as Trump said he would be posting letters to the leaders of a dozen countries today. The U.S. president announced the decision on his social media platform, Truth Social, where he posted copies of letters that he sent to the leaders of each country. The letters to the Southeast Asian countries warned them not to retaliate by increasing their own import taxes, or else the U.S. administration would increase import taxes, which would adversely affect the auto and electronic sectors of Japan and South Korea. Trump imposed steep tariffs on 5 additional countries, Myanmar, Laos, South Africa, Kazakhstan, and Malaysia, as part of his ongoing effort to correct trade imbalances. He said that the U.S. is ready to continue trade despite having a significant trade deficit with them, but it will be more fair and balanced trade.
और अब बात करते हैं खेल की दुनिया की खबरों से। भारतीय ब्रॉडकास्टर संजय गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि श्री गुप्ता खेल रणनीति और कमर्शियलाइजेशन में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं, जो आईसीसी के लिए अहम होगा। श्री गुप्ता ने एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, बाद में कई प्रसारण संस्थाओं में काम करने के साथ ही उन्होंने मल्टी लैंग्वेज, डिजिटल फर्स्ट और वुमेन फोकस्ड कवरेज के क्षेत्र में व्यापक अनुभव अर्जित किया है।
एंड क्रिकेट पर ही और अच्छी खबर हम सुनाते हैं। इन क्रिकेट इंडिया अंडर 19 टीम सील द 5 मैच यूथ ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड अंडर 19 बाय 3-2 यस्टरडे। इन द 5th एंड लास्ट ओडीआई मैच ऑफ द सीरीज इंग्लैंड डिफीटेड इंडिया बाय 7 विकेट्स एट द काउंटी ग्राउंड इन वूस्टर। हाउएवर द आयुष मात्रे लेड मेन इन ब्लू मैनेज टू क्लिंच the series. In the final encounter, India opted to bat first and scored 210 for 9 in 50 overs. RS Amrish remained not out and hit highest 66 runs. In response, the host chased the total in 32nd over with 7 wickets in hand. In response, the host chased in total in 32nd over with 7 wickets in hand. Opening batter Ben Dawkins, 66, and Ben May's unbeaten 82-run knock helped the host in winning the match. For India, Naman Pushpak picked up 2 wickets, while Deepesh Devendran also bagged 1 wicket. The young Indian side will next play 2 youth matches, test matches against England under-19, starting at Beckenham from 12th of July.
तो श्रोताओं, ये थे अब तक के मुख्य समाचार। श्रोताओं, कार्यक्रम आज सवेरे में अब वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज का, और सबसे पहले चेन्नई के समाचारों के साथ है रिनु
जी। थैंक यू सिद्धार्थ। जापानीज कोस्ट गार्ड शिप इत्सु कुशीमा अराइव्ड एट चेन्नई पोर्ट ऑन मंडे एज पार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग। दिस विजिट अंडरस्कोर्स द डीप एंड एंड्योरिंग बॉन्ड बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द जापान कोस्ट गार्ड, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द वाइटल इंडो पैसिफिक रीजन एंड एनहांस इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन द टू रिनोन्ड मैरिटाइम फोर्सेज। दिस विजिट इज बींग कोऑर्डिनेटेड बाय हेडक्वार्टर्स कोस्ट गार्ड रीजन हेडेड बाय इंस्पेक्टर General Datwinder Singh Saini. On arrival at Chennai port, the JCG ship commanded by Captain Naoki Mizoguchi was given a ceremonial welcome in a traditional way, and officers of JCG were garlanded. Presence of NCC cadets to cheer the ship crew and a scintillating performance by a decorated ceremonial band added feathers to the warm welcome. Moving on to you, Siddharth, let's have some news from Delhi Metro.
जी हाँ, रुक करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का, और सबसे पहले बात करते हैं क्लीन दिल्ली ग्रीन दिल्ली की। नई दिल्ली पालिका परिषद यानी NDMC ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत कल से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर में 7,000 से अधिक पेड़ और 35 लाख झाड़ियां लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर एक पेड़ मां के नाम के जो पहल है, इसमें नई दिल्ली क्षेत्र में एक बड़ा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है। श्री चहल ने बताया कि NDMC ने इस साल गैप फिलिंग अभियान शुरू किया है ताकि सड़कों और चौराहों के किनारे लगातार हरियाली बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस अभियान में करीब 80 सड़कों को शामिल किया गया है। अभियान का लक्ष्य प्रदूषण को कम करना है। और रेनु, ये जो मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, मानसून का मौसम है, तो ऐसे में अगर आप कोई पौधा लगाते हैं तो बहुत आसानी से वो ग्रो कर जाता
जी,
है।
मदर नेचर इटसेल्फ इज हेल्पिंग द प्लांट्स टू ग्रो।
जी बिल्कुल। तो हम अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कि ये बिल्कुल उपयुक्त समय है अपनी राजधानी को हरी भरी बनाने का, तो आप भी ये संकल्प लें और एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल हो और कम से कम एक पौधा इस सीजन में आप जरूर लगाएं।
और इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई जगह ढूंढनी है या कहीं और जाना है, आप घर बैठे बैठे अपने गमलों में अपने घर के आसपास भी पौधे लगा सकते हैं।
बिल्कुल। तो रेनू ने आपको बताया कि अपने गमले में भी पौधे लगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पौधे लगाने से ज्यादा आपको निरंतर उसमें जो पानी देना होता है, उसको उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि पौधा एक दिन ना लगाएं बल्कि लगातार उसको स्वस्थ रखें, उसको पानी दें ताकि हरा भरा होकर वो हम सबको छाया दे सके
और फल भी दे।
जी, फल भी दे और दिल्ली के प्रदूषण को कम भी कर सके। बढ़ते अगली खबर की ओर, दिल्ली सरकार ने बिजली के बिलों को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यूटिलिटी लेट एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत राजधानी में रूफटॉप सोलर लगाने की शुरुआत की है। आपको बता दें कि इस मॉडल में डिस्कॉम यानी बिजली वितरण कंपनी उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित कर उपयोग में लाते हैं। इस योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस योजना का उद्देश्य दिल्ली को स्वच्छ, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार राजधानी बनाना है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली के नागरिकों को बिना किसी अग्रिम लागत के सौर ऊर्जा का लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मॉडल के तहत अब दिल्ली के निवासी अपने घरों या संस्थानों पर बिना किसी पूंजी निवेश के रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को केवल अपनी छत उपलब्ध करानी होगी जहां सोलर प्लांट लगाया जाएगा। और रेनू, ये बहुत अच्छी पहल है जब आप अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढते हैं और सौर ऊर्जा के माध्यम से। ये एक ऐसा अभियान है जिसके तहत मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें शामिल होना चाहिए, ताकि जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें।
सी अगेन सिद्धार्थ, वी आर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसे आपने कहा कि हमें पौधे लगाने चाहिए, हम यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। सो देयर इज सो मच दैट वी कैन टेक फ्रॉम मदर नेचर। ये सिर्फ हमारे ऊपर है कि हम किस तरह मदर नेचर से अपने लिए बहुत कुछ ले सकते हैं और फ्री में ले सकते हैं, उसका हमें कोई बिल भी नहीं भरना पड़ता है।
तो बढ़ते अगली खबर की ओर। ये खबर उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि सांस्कृतिक गतिविधियों पर रहती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन आज शाम 4 बजे कमानी ऑडिटोरियम मंडी हाउस में किया जाएगा। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी उपस्थित रहेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि मंचित होने वाले इस नाटक में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से जुड़े पहलू देखने को मिलेंगे। और अब नजर डाल लेते हैं बेंगलुरु मेट्रो की खबरों पर।
So moving on to Bengaluru, the Karnataka government is set to amend the Prohibition of Child Marriage Act to criminalize not only child marriages but also attempts and preparations for child engagements. The Prohibition of Child Marriage Karnataka Amendment Bill 2025 proposes new provisions including Section 9A which penalizes attempts for preparations for both child marriages and engagements. Under the existing central law, the Prohibition of Child Marriage Act 2006, punishment of up to 2 years imprisonment and a fine of rupees 1 lakh applies only to actual cases of child marriage. The proposed amendment aims to extend the same penalties to those attempting or preparing for child engagements as well. So, be careful.
जी हाँ जी। और रेनू, अब रुक करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के समाचारों का।
जी।
मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कल बिम्स्टेक देशों के लिए एक विशेष कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा में क्षेत्रीय सहयोग मजबूत करना है। इस अवसर पर बिम्स्टेक और सार्क के संयुक्त सचिव CSR राम ने कहा कि ये पहल कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने के साथ बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग और अनुसंधान के लिए एक नेटवर्क स्थापित करने में भी सहायता करेगी। और रेनू, कैंसर एक ऐसी बीमारी है क्योंकि जिसके लक्षण बहुत आम बीमारियों जैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने जो पीरियोडिक टेस्ट हैं वो कराना भूल जाते हैं।
Exactly.
तो अगर हम रेगुलर अपने जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, अपने शरीर की जांच कराते रहें तो शुरू में ही पता चल जाता है, ताकि इसका उपचार संभव हो सके।
जी,
बढ़ते अगली खबर की ओर। ये खबर मुंबई में भारी बारिश की वजह से 7 झीलों का जलस्तर बढ़ने के ऊपर है, और इससे एक फायदा ये हुआ है कि शहर में जल भंडार बढ़ गया है। कुल जल स्तर अब बढ़कर 9.84 लाख मिलियन लीटर हो गया है, जो सामूहिक जल ग्रहण क्षमता का लगभग 67% है। यहां पे मध्य वैतरणा झील 90% क्षमता तक पहुंच गई है, जिसके कारण अधिकारियों को कल मोडक सागर में अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए 3 बांध के गेट खोलने पड़े। समय से पहले और तीव्र मानसून के कारण झील का जल स्तर सामान्य से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। मौजूदा जल स्तर शहर की 248 दिनों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रेनू, ये बड़ा ही उपयुक्त समय है।
आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें दी है मेट्रो न्यूज के थ्रू।
जी बिल्कुल। और अब हैदराबाद से आपके
पास क्या समाचार है? Yes, exactly. I was coming to Hyderabad. The National Disaster Management Authority or NDMA expert team is scheduled to visit the Pashimailaram industrial area in Sangareddy district today to study the causes of the recent explosion at Sigachi Industries Limited. According to district officials, the team will inspect the blast site and assess the circumstances that led to the industrial accident. The team will submit its findings to the State Disaster Management Authority as well as a detailed report to the central government. So far, 42 people have been confirmed dead in the explosion, while 8 staff remain missing. The NDMA team is expected to interact with the families of the victims, district officials and representatives of the company's management.
अरेनु, अब रुक कर लेते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता के समाचारों का। पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी डब्ल्यू बीपीसीबी राज्य के वन विभाग के साथ मिलकर राज्य के पश्चिमी हिस्से की सीमाओं पर बायो शील्ड बनाने का काम कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में राज्य के झारग्राम जिले के आसनी बनी इलाके में 7 किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ लगाए गए हैं। अब ये परियोजना पश्चिम बंगाल के झारग्राम और पुरुलिया जिलों में लागू की जा रही है। तो जैसा कि हमने बात करी कि मानसून का मौसम चल रहा है, तो जगह जगह पेड़ लगाए जा रहे हैं और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित किया जा रहा है।
Exactly.
तो श्रोताओं, ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर सिद्धार्थ और रेणु के साथ। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:50 और पूरे 12 सेकंड हो चुके हैं। अब जानते हैं आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। और रेनू, सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम।
जी बिल्कुल, बताइए।
राष्ट्रीय राजधानी में आज मौसम की बात करें तो यहाँ कल तो बारिश हुई है, लेकिन आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी राजधानी में तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रुख करें मुंबई का, तो यहाँ भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मध्यम वर्षा होगी। आज का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता की बात करें तो यहां भी आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज कोलकाता में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो रेनू, आज तीनों ही महानगरों में बारिश होने वाली है, लेकिन फिलहाल चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु का मौसम कैसा रहने वाला
आप
है?
ज्यादा खुश ना होइए, क्योंकि बाकी तीनों में भी इट्स अ पार्टली क्लाउडी स्काई हर जगह, क्योंकि मॉनसून पूरे इंडिया में आ ही चुका है। सो टॉकिंग अबाउट चेन्नई, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 29 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 20 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम विल बी अराउंड 29 degrees. And Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain. The temperature will hover between a minimum of 23 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम आज सवेरे में इतिहास के पन्नों को पलटने का और उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन का इतिहास बन गए हैं। सबसे पहले चलते हैं 1497 में, आज ही के दिन वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत की पहली जलमार्ग से यात्रा की शुरुआत की थी।
एंड इसी के ऊपर थोड़ा और मैं बात करना चाहूंगी। ऑन दिस डे एज यू सेड इन 1497 वास्को डी गामा सेल फ्रॉम लिस्बन विद अ फ्लीट ऑफ 4 वेसल्स एंड ही अल्टीमेटली ओपन्ड अ सी रूट फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप टू एशिया by way of the Cape of Good Hope, ushering in a new era in world history. और सिद्धार्थ, हम जब हिस्ट्री की बात करते हैं, हम अपने लिसनर्स को हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, तो यू नो ईच इवेंट दैट हैज अकर्ड ऑन दिस डेट, जैसे कि हम रोज बताते हैं, रिमाइंड्स अस ऑफ द इंट्रिकेट टैपेस्ट्री ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, स्ट्रगल एंड अचीवमेंट दैट हैज शेप्ड आवर वर्ल्ड। और इसी पे थोड़ा सा आगे जाऊंगी मैं। इन द ईयर 1954 जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया inaugurated world's longest Bhakra Nangal Dam Canal at Punjab.
और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1918 की बात करते हैं, जब भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी थी, और 2005 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ग्रुप 8 के देशों में सहमति बनी थी। तो ये थे कुछ इवेंट जिनकी हमने बात की, और अब याद करते हैं उन महान हस्तियों को जो आज के दिन हमसे मिले या जुदा हुए। इस कड़ी में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं सुभाष मुखोपाध्याय को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। वो बांग्ला कवि और साहित्यकार थे। 1991 में सुभाष मुखोपाध्याय को साहित्य के सबसे बड़े सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साल 2003 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया।
एंड टॉकिंग अबाउट पी बी शेली, जिनको आज हम ट्रिब्यूट्स दे रहे हैं, ही वॉज एन इंग्लिश राइटर हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, अ रेडिकल इन हिज पोएट्री एज वेल एज इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल व्यूज। शेली डिड नॉट अचीव फेम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट रिकग्निशन ऑफ हिज अचीवमेंट्स इन पोएट्री ग्रू स्टेडली फॉलोइंग हिज डेथ, एंड ही बिकेम एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट जनरेशन ऑफ पोएट्स इंक्लूडिंग Robert Browning, Swinburne, Thomas Hardy, and W.B. Yeats. American literary critic Harold Bloom describes him as a superb craftsman, a lyric poet without rival, and surely one of the most advanced skeptical intellects ever to write a poem.
और श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है बॉलीवुड के मशहूर हास्य अभिनेता सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी की, जिन्हें हम सब प्यार से जगदीप के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने हास्य अभिनय से दर्शकों में काफी लोकप्रियता हासिल की, क्योंकि जगदीप का एक ऐसा कैरेक्टर था कि आते ही हम सब मुस्कुराने पर मजबूर हो जाते थे।
शोले का
शोले का और तो आपने शोले की बात की है, तो सुरमा भोपाली का जो किरदार था उनका, उस पर ये डायलॉग सुनते हैं।
जी,
वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तुरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि तुरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
जी हाँ, जगदीप का अपना ही अंदाज था। उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था।
जी, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आशा खिलुनी नायर, बेटर नोन बाय हर स्टेज नेम रेवती, जिनका आज बर्थडे है, हु इज एन इंडियन एक्ट्रेस एंड डायरेक्टर नोन फॉर हर वर्क्स प्रीडोमिनेंटली इन तमिल एंड मलयालम सिनेमा, इन एडिशन टू तेलुगु, हिंदी एंड कन्नड़ा फिल्म्स। शी वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ साउथ इंडियन सिनेमा एंड हैज वन सेवरल एक्लेड्स इंक्लूडिंग 3 नेशनल अवार्ड्स एंड 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स साउथ। She also won the Kerala State Film Award for her performance in Bhootakalam in the year 2022. And coming up, dear listeners, is a beautiful romantic song sure to make you reminisce the 90s era of movies. Love movie se bahut hi pyara gana, Saathiya Tune Kya Kiya.
करो ना मुझे प्यार, इतना करो ना मुझे प्यार।
साथिया तूने क्या कहा, मेरी ये तूने क्या कहा।
यूं ना कभी।
अश्वतों, आज ही जयंती है सुप्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार विष्णु डे की। उन्हें 1971 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ ही उनके द्वारा रचित कविता संग्रह स्मृति सत्ता भविष्य के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही आज ही जयंती है हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार और आलोचक गिरिराज किशोर की। एक कहानीकार के रूप में इन्होंने पर्याप्त ख्याति अर्जित की। गिरिराज किशोर का एक उपन्यास है ढाई घर, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ और 1991 में इसे प्रकाशित किया गया और 1992 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी की अफ्रीका प्रवास पर आधारित था, जिसने इन्हें विशेष पहचान दिलाई।
And today is the birthday of Jaden Christopher Sar Smith, who's an American rapper and actor. He's the son of Jada Pinkett Smith and Will Smith and has received various accolades, including a Teen Choice Award, an MTV Movie Award, and a BET Award, and a Young Artist Award. And here, let's listen into Jaden Smith singing for Marvel Spider-Man, I'm Ready.
You always mean the other one. You're Spider-Man.
I'm fresher than fresh. I step out the steps and we're all running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next. It really isn't no question. Only superheroes in a section. Only big bangers on the set.
अश्वतों, आज ही जन्मदिन है बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा नीतू सिंह का। उनका जन्म 8 जुलाई 1966 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 8 साल की उम्र में बेबी सोनिया नाम से अभिनय शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1966 में सूरज के साथ पहली बार भूमिका निभाई थी। फिर 73 से 83 का दौर जिसमें उन्होंने 50 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। श्रोताओं, अब धीरे धीरे घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आपसे विदा ली जाए। चलते चलते आपसे यही कहेंगे कि हर दिन खास होता है और आज के दिन ये कोशिश करते हैं कि खुद तो मुस्कुराएं ही साथ में किसी और की मुस्कुराहट की वजह भी बने।
Yes, and stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi News Bulletin, followed by Morning News in English at 8:15 a.m. And thank you for tuning in, dear listeners. Have a superb day.
Namaskar.